बहुत सारी भेड़े थी और उसका व्यवसाय था उन सभी भेड़ों को मारना, खाना या फिर बेचना। ये सारी जो भेड़े थी उसके पास खुली जगह पर रहती थी, पर एक दिक्कत उसको जो आती थी वो थी कि कोई ना कोई भेड़ रोज जंगल में भाग जाती थी। उनमें से कुछ भेड़े थी जो बहुत होशियार थी, वो देखती थी कि आज ये भेड़ कट रही है, कल हमारा भी नंबर आएगा, और वो भाग जाती थी। उन उस जादूगर को उन सभी को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था, और जो भेड़े भाग जाती थी वो दूसरी भेड़ों को भी कहती थी कि तुम भी भागो वरना तुम्हें भी मारा जाएगा, यदि बचना चाहते हो तो यहां से भागो। तो रोज रोज की ये परेशानी उस जादूगर को, उसे एक दिन एक युक्ति सूझती है। वो सभी भेड़ों को थोड़ा सा बेहोश कर देता है और एक एक को अलग लेके जाकर एक बात समझाता है कि जो कट रही है वो भेड़े हैं, तुम नहीं हो। किसी को वो समझाता कि तुम शेर हो और जो कट रही है वो भेड़ है। किसी को वो समझाता तुम चीता हो, जो कट रही है वो भेड़ है, तुम कभी नहीं कटोगी। किसी को वो समझाता था तुम मनुष्य हो, हिप्नोसिस सम्मोहन। किसी को वो समझाता कि तुम तो जादूगर खुद हो, तुम कभी नहीं कटोगे। तो सारी भेड़े इतनी खुश हो गई, उसके बाद उन्होंने भागना बंद कर दिया। जब भी भेड़ कोई कटती तो सारी भेड़े अंदर ही अंदर खुश होती। कोई सोचती मैं तो शेर हूं, कोई सोचती मैं सिंह हूं, कोई सोचती मैं मनुष्य हूं, कोई सोचती मैं जादूगर खुद हूं और मुझे नहीं कटना। किसी की हिम्मत जो मुझे काटे। परंतु जब उसकी बारी आती थी कटने की, तब उसे पता चलता कि अब मुझे कटना है और मैं भी भेड़ ही हूं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। जो उस जादूगर ने उन भेड़ों के साथ कर दिया है, सम्मोहन करके उन्हें वह बता दिया जो वो है ही नहीं। इस जगत में विकारों ने अथवा माया ने मनुष्य को इसी तरह सम्मोहित कर दिया है, उसे वह बता दिया है जो कि वो है ही नहीं। है तो वो आत्मा, परंतु उसे इस तरह हिप्नोटाइज्ड कर दिया है कि वो देह है, और यही सम्मोहन उसे सारी ही जीवन भर घेरे रहता है। वास्तविकता है कि आत्मा अकेली है इस धरती पर, आत्मा का आत्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है। आत्मा का आत्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है, परंतु सम्मोहन ऐसा प्रगाढ़ है, इतना गहरा है कि मनुष्य सोचता है ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरा समाज है, ये मेरा राज्य है, ये मेरी भाषा है, ये मेरा देश है। इसी सम्मोहन में वो जीता है। हम सभी एक रीति से इसी तरह सम्मोहित है। इतना सूक्ष्म यह सम्मोहन है कि उससे निकलना भी मुश्किल है। पहले तो ये जानना आवश्यक है कि हम वो होकर नहीं चल रहे जो हम वास्तव में है। हमारे पास एक होता है ज्ञान होना, परंतु यह ज्ञान सूचना नहीं है। एक है ज्ञान, एक है सूचना, एक है इंफॉर्मेशन, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है विजडम। हम अभी जिस तल पर है, हो सकता है वो केवल इंफॉर्मेशन है। हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, सूचना की हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है, परमधाम हमारा घर है, 5000 साल का ये कल्प है, अभी संगम युग चालू है, भगवान आया है, सबको वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। मुरली में हम जो भी सारी बातें सुनते हैं, हो सकता है वो केवल सूचना ही हो। सूचना काफी नहीं है इस गहरे सम्मोहन को तोड़ने के लिए। सम्मोहन कैसे किया जाता है? डॉक्टर सर्जन जो होता है, शल्य चिकित्सक, जब किसी को ऑपरेशन करना हो, सीधा ऑपरेशन करता है क्या? सबसे पहले तो जांच होती है, सारी ब्लड टेस्ट होती है, खून की परीक्षाएं होती है, उसके बाद में मरीज को भर्ती कराया जाता है। भर्ती करने के बाद उसको और कंसर्न्ड लोग, फिटनेस प्राप्त किया जाता है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर है वो देखता है, सब तरफ से सब लोग देखते हैं, फिर उसके क्लीनिंग एंड ड्रेपिंग, बॉडी पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, क्लीन किया जाता है, कुछ इंजेक्शंस की टेस्टिंग होती है कि उससे रिएक्शन ना आ जाए, उसके बाद फिर ऑपरेशन, फिर कंसेंट भी दी जाती है, उसके बाद फिर ऑपरेशन थिएटर में दिया जाता है। वहां पर भी डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं, पहले उसको एनेस्थीसिया भूल दी जाती है, ये सब किया जाता है इतना सारा, और उसके बाद फिर ऑपरेशन किया जाता है। सम्मोहन की प्रोसेस जो है वो भी कुछ इस तरह ही है। जितना गहरा सम्मोहन होगा उतना ही गहरा प्रभाव होगा। हो सकता है ये जो ऑपरेशन कर रहे कुछ करे ही ना, थोड़ा सा काट दे और उसको फिर से सिला दे, और फिर बाद में मरीज को कहे कि ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया, तो वो भी मान ले हां बहुत अच्छा हुआ। सम्मोहित, उसकी ये सारी प्रोसेस है, उससे गुजरने के बाद वो परिणाम, यथेष्ट परिणाम सामने आता है। उसी तरह मेडिकल में उदाहरण एक दिया जाता है, एक महिला थी जो ये सोचती थी कि उसके दिमाग में एक सांप है, उसका ऐसा मानना था कि उसके दिमाग में क्या है, एक सांप है। कई डॉक्टरों को उसने दिखाया, तो डॉक्टर ऐसी बात तो कभी सुनेंगे नहीं, हंसी उड़ाएंगे कि इसका तो पीएसवाई, मरम हम इंग्लिश में कहते हैं पीएसवाई, साइकेट्री को पीएसवाई कहते हैं हम लोग, ताकि पेशेंट को भी समझ में ना आए। आपको, आपके सामने ये राज हमने खोल दिया आज। पीएसवाई क्या प्रॉब्लम है? पीएसवाई तो पीएसवाई मतलब, ताकि साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कभी संतुष्ट नहीं हुई, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के पास, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ऐसा कोई भी जांच नहीं छोड़ी उसने जो नहीं की। पर जहां पे भी जाते थे डॉक्टर लोग कहते थे कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। अब जिसको वहम है, ये व्यक्ति कभी मानेगा कि ये मेरा वहम है? कभी नहीं मानेगा वो, तो कभी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी उसको समझा दो, दिखा दो, वो नहीं मानेगा कि ये वहम है। तो वो जो बहन है, वो माता जी जो है, वो ऐसे ही घूमती रही, इस अस्पताल से उस अस्पताल और उस अस्पताल से उस अस्पताल, एक न्यूरोलॉजिस्ट से दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट, और अंत में एक न्यूरोसर्जन के पास पहुंची अपनी बहुत बड़ी फाइल लेकर। उसने वो सारा कुछ देखा, उसको सुना, और उसने कहा कि हां सांप तो है, तब कहीं उसके उसको थोड़ा शांति मिली कि कोई तो है संसार में जो ये माने, नहीं तो ये तो सारे डॉक्टर बेवकूफ है, कोई मानने को तैयार नहीं है, पेशेंट की बात सुनने को तैयार नहीं है, सभी कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, कुछ है ही नहीं जांच में। ये पहला बुद्धिमान व्यक्ति उसको मिला और उसने कहा कि तुम्हें भर्ती करना पड़ेगा, तो उसको और थोड़ी हिम्मत आई कि कुछ तो है, मतलब मैं जो कह रही थी इतने सालों तक अनडायग्नोज रही। और उसने कहा ऑपरेशन भी करना पड़े उसे, तो उसने कहा आप जो कहोगे वो मैं आपको दूंगी, इतनी अमीर थी वो, जो भी आप कहोगे वो मैं आपको दूंगी। उसने कहा ठीक है, ये तारीख डेट दी, तुरंत नहीं कह रहे, उसने कहा अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि पेंडिंग बहुत बिजी है शेड्यूल। तो वो तो उसको तो एकदम और हिम्मत आ गई कि हाँ ऐसा ही है, मतलब है कोई बात। बराबर वो भर्ती हो गई, सारी जांचें फिर से हुई, उसके बाद में उसने दिखाया भी एमआरआई में कि ये देखो सांप बैठा है। उसने कहा क्या कहूं अब, आप जो बोलोगे वो सही है। और फिर उसको ऑपरेशन की डेट फिक्स हुई, सभी डॉक्टर्स ने भी देखा उसको, वो ऑपरेशन थिएटर गाउन पहनाया गया, उसके बाल वगैरह काट दिए गए और उसको लेके गए ऑपरेशन थिएटर में और एनेस्थीसिया दिया गया, इंसिजन दिया गया, कट किया गया और ऑपरेशन हुआ, परंतु हुआ नहीं क्योंकि कुछ था ही नहीं, ये तो एक सब कुछ क्रिएट किया गया था। और उसके बाद में उसको वार्ड में भेजा गया, आईसीयू में फिर वार्ड, और उसको बता दिया गया कि ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, सक्सेसफुल। तब कहीं उसको लगा कि हाँ, मतलब वो था, ये दुनिया के डॉक्टर तो ऐसे ही झूठ मूठ झूठे थे सारे के सारे, किसी को विश्वास ही नहीं था, यही एक सच्चा मिला। और फिर उसका वापस एमआरआई हुआ और उसको दिखाया भी, अब उसको थोड़ी समझ में आता है उसमें काला पीला जो दिख रहा है, तो उसको दिखाया देखो पहले सांप था और हमने इस सांप को निकाल दिया, अभी नहीं है और टाके 7 दिन के बाद निकालने पड़ेंगे। तो टाके भी निकाल दिए गए और उसे छुट्टी हुई। वो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि डॉक्टर्स को सौगात दी, हॉस्पिटल स्टाफ को सौगात दी और सभी को सौगात देकर वो घर गई। तभी डॉक्टर कह रहा था कि ये है विधि सम्मोहत, क्योंकि उसका एक जो वहम था या भ्रम था उसको निकालने के लिए ये सब कुछ किया गया, जो कि कुछ है ही नहीं था, था ही नहीं कुछ, परंतु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई। क्योंकि जब तक ये सिचुएशन नहीं क्रिएट की जाती तब तक वो आत्मा संतुष्ट नहीं होती। परंतु आश्चर्य तो तब घटित हुआ जब वो पेशेंट 15 दिन के बाद फिर आ गई। उसने कहा सांप तो निकल गए पर उनके अंडों का क्या, वो 2 अंडे तो अभी भी वही है। सम्मोहन जो है इस तरह की बात है, हम भी एक रीति से सम्मोहित है, माया ने सम्मोहन कर दिया है, जो कि हमने बहुत सारी चीजें ऐसी मान ली है कि जो हो है ही नहीं, वो हमारा सम्मोहन है। और समाज भी इसी तरह के सारे सम्मोहन तैयार करता है, उसमें एक सम्मोहन है विवाह, ये सबसे बड़ा सम्मोहन है। कैसे, विवाह में एक ऐसा व्यक्ति जिसे आज तक कोई पूछ नहीं रहा था, कोई ध्यान नहीं देता है उसके तरफ, उसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है उसमें, जिसे आज तक किसी ने पूछा भी नहीं था। अभी सम्मोहन की प्रोसेस में खर्चा जब तक नहीं करेंगे तब तक वो सम्मोहन भी नहीं होगा। सम्मोहन जितना लंबा अगर करना है और प्रभावशाली यदि करना है, अब ये सम्मोहन तो जीवन भर टिकने वाला है विवाह वाला, तो उसकी जो व्यवस्था है वो उतनी बड़ी होनी चाहिए, उतना ही खर्चा होना चाहिए। तो वो जो विवाह है पहले तो उसकी तारीख और उसकी पूर्व तैयारियां चलती है, वो भी जैसे एक रीति से मनुष्य का जो मैं है यहां सम्मोहित हो रहा है, मनुष्य का जो मैं है, जो अहंकार है, उसका यहां पोषण होता है सूक्ष्म रीति से, कि जो सोचने लगता है मैं थोड़ा अब कुछ और हूं, मैं वो नहीं रहा अब जो पहले था, और जब उसे दूल्हा बनाया जाता है और उसके सिर पर पगड़ी और उसको वो सारे वस्त्र पहनाए जाते हैं और जब वो घोड़े पर बैठता है तब उसे लगता है मैं घोड़े के ऊपर हूं और सारी दुनिया घोड़े के नीचे, और उसे जो खुशी होती है और फिर उसको कोई मिलता है, ये दूल्हा उधर दुल्हन की भी यही बारी है, यही बात है, उसको फिर लगता है ये मेरी है, वहां सम्मोहन क्रिएट होता है। ये सारी पूर्व तैयारी और व्यवस्थाएं रची जाती है और वो एक सम्मोहन क्रिएट होता है कि ये मेरी है, उसको ये एक सम्मोहन होता है कि ये मेरा है, और समाज उसे स्वीकृति देता है। और इसी संबंध से जो संबंध निर्माण होता है, इसके लिए इतना गहरा होता है, क्योंकि बहुत खर्चा करके वो सम्मोहन हुआ है, पर है वो भी सम्मोहन ही और दूसरा कुछ नहीं है, सम्मोहन ही। हिप्नोटिज्म, सोसाइटी सपोर्टेड हिप्नोटिज्म, समाज ने उसको उसकी पालना की है और उसी में स्वीकृति मिलती है काम विकार के लिए, जो वो समझते हैं ये हमारा हक है। पहले ये हक नहीं था, पहले ये व्यभिचार होता, परंतु समाज इस तरह से निर्मित है कि उसे स्वीकृति दी जाती है। और देह के बंधन में बंधने के बाद ये संबंध और प्रगाढ़ होता है और बंधन बनता है, और फिर सारी उम्र घसीटते रहता है व्यक्ति को, और व्यक्ति फिर उससे मुक्त नहीं हो पाता। जितना अधिक खर्चा उतना अधिक सम्मोहन ज्यादा। यदि एक सम्मोहन को रिवर्स करना है, जैसे उस डॉक्टर ने किया, वो सब कुछ किया, वो भी पहले से एक सम्मोहन था, उसे उससे बाहर निकालने के लिए एक नया सम्मोहन क्रिएट किया। यदि हम भी सम्मोहित हैं, एक नया हिप्नोटिज्म क्रिएट करना पड़ेगा अभी हमको, एक रीति से स्पिरिचुअल हिप्नोटिज्म, जो कि वास्तविकता है। हम जो है, अब तक हम सोच रहे हैं हम ये देह है, और देह के जो भी संबंध है वो सभी हमारे हैं, पर ये हमारा इसमें से कोई भी नहीं है। हम हमेशा क्लासेस में एक उदाहरण देते हैं, प्लॉटिनस नाम का एक विचारक है, उसने कहा है जीवन जो है वो इट इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, ये यात्रा अकेले की अकेले की तरफ, इसमें कोई किसी का साथी नहीं है। जो हमें दिख रहा है, ये मित्र, ये संबंधी, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये साथी, इनमें से कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी नहीं। ये एक भ्रम में हम जी रहे हैं, सोच रहे हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। यहां कोई भी किसी का भी नहीं है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले ही चलना है हमें। ये एकांगी पगडंडी है, ये जो पगडंडी है जिस पे हम चल रहे हैं वो एकांगी है, अलोन, कोई इसमें हमारे साथ नहीं है। हम हैं और हमारे कर्म हैं, हमारे पुण्य हैं, हमारे पाप हैं, इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं। अगर हम सोच रहे हैं तो वो समझ लो सम्मोहन की अवस्था है। यदि एक सम्मोहन से हमें मुक्त होना है तो दूसरा सम्मोहन क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज हम इस क्लास के बाद योग करेंगे 6:30 से 7 बजे तक। उसके बाद जैसे समाज ने वो सम्मोहन क्रिएट किया था विवाह का, एक नया रियल स्पिरिचुअल डी हिप्नोटिज्म, हम आत्माएं अब उसकी हो गई और वही हमारा अब सब कुछ है। इस भाव को जैसे दूल्हा तैयारी करता है, दुल्हन तैयारी करती है, पहले ही डेट फिक्स होती है, उतने कुछ महीने तो स्वप्न देखते रहते हैं एक दूसरों के बारे में और या आगे के जीवन के बारे में। समय चाहिए, समय और पैसा दो चीज खर्च होनी चाहिए, तब वो सम्मोहन बहुत गहरा होगा। तो हम भी एक विवाह यहां रचेंगे जिसमें आत्मा का विवाह होगा उस परम माशुक के साथ, जिसके सिवा इस संसार में और कोई सत्य नहीं, वो परम सत्ता है और परम सत्य है। कर्मेंद्रिय जीत, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ बातें हमने सुबह कही थी इस बारे में, अभी और थोड़ी विस्तार से कहेंगे। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात क्या? कर्मेंद्रियों को जिसने वश में कर लिया हो, जो कि कर्मेंद्रिय भूपति नरेश राजा है, कर्मेंद्रिया जिसके अधीन है, कर्मेंद्रियों की जो उत्तेजना है, एक्साइटमेंट आवेग उद्वेग, वो शांत हुआ है, इतना शांत हुआ है कि वो अब स्वतः ही वश में है। नहीं तो मनुष्य का मन एक तरफ और कर्मेंद्रिया भागती रहती है, उसको दौड़ाती रहती है, भगाती रहती है। सारी उम्र अगर देखो तो यही होता है, कर्मेंद्रिया भाग रही है, उसके पीछे मनुष्य भाग रहा है, किसी ना किसी रस के वो अधीन है। क्या ऐसी कर्मेंद्रिय जीत अवस्था हो सकती है? बहुत मुश्किल है। संसार की अगर बात कहे, संसार के दृष्टिकोण से कहे तो बहुत ही ऐसे गिने चुने लोग हैं इस संसार में, हम कह सकते हैं जो कर्मेंद्रिय चेत थे, बहुत ही गिने चुने। क्या ये शर्म की बात नहीं अगर हम इतिहास को देखे, सृष्टि के इतिहास को, द्वापर से अब तक के कितनी आत्माएं हैं? एक महावीर है, एक बुद्ध है, एक गुरु नानक है, या फिर जो भी धर्म स्थापक थे, बस वही कर्मेंद्रिय जीत थे, बाकी उनके फॉलोअर्स कहां थे? कोई श्रेष्ठ भक्त, कोई मीरा, कोई तुलसीदास, कोई एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, बसवराज, ऐसे ही कुछ संत थे जो कि बाहर थे। पर ये क्या अच्छी बात है? अगर देखो हम कहे ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में 95 लोग हैं और केवल 5 ही लोग हैं जो बाहर है, जो स्वस्थ है, तो क्या ये बहुत अच्छी बात है? ये समाज भी ऐसा ही है कि समाज में जो भी लोग हैं कर्मेंद्रियों के अधीन है, वश है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानी अज्ञानियों की मिलाकर। ज्ञान प्राप्त हो गया, 7 दिन का कोर्स कर लिया, यहां आ गए, मुरली सुन ली, मधुबन में जाके बाबा से मिल लिए, एक दो बार भट्टिया कर ली, मुरली पर क्लास सुनी और सुनाई, कोर्स किया कराया, मुरली पढ़ी पढ़ाई, ये सब कुछ किया, परंतु कर्मेंद्रिय जीत बन जाना एक दूसरी अवस्था है। सारी ही कर्मेंद्रिया वश में हो जाए, ये साधना है। बिना साधना के ये हो नहीं सकता। केवल सेवाओं में भाग रहे हो, यह अवस्था नहीं आ सकती है। कर्मेंद्रियों की उत्तेजना जो चंचलता है, बाबा ने कभी कहा है कि जब कर्मेंद्रियों की चंचलता कम हो जाएगी तो समझना द्वाप त्रेता तक पहुंचे हो। अभी अभी मुरली में भी आया था कुछ मास पहले। जब कर्मेंद्रियों की चंचलता कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो समझना कहां तक अवस्था गई है, केवल त्रेता तक पहुंचने की अवस्था है। ये सारी ही कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, शांत हो जाए, उसमें जो आवेग है सेंसेस में, जो सेंसुअलिटी है वो समाप्त हो जाए, ये एक साधना है। तो कर्मेंद्रिय जीत अर्थात सारी ही कर्मेंद्रियां वश में आ जाए। भक्ति में ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया ऐसा कहते हैं। ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्म है, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया। बाबा इस तरह का डिवीजन नहीं करते हैं, बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिया, जिसमें बाबा का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया अर्थात पांच, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, ये पांच कर्मेंद्रिया, ये पांच बाबा के शब्दों में कर्मेंद्रिया, परंतु शास्त्र और भक्ति मार्ग इन्हें ज्ञानेंद्रिया कहता है, और कर्मेंद्रिया पांच और है। तो सबसे पहला है रूप अर्थात आंख, रस अर्थात जबान, रूप रस स्पर्श अर्थात चमड़ी, गंध अर्थात नाक, शब्द अर्थात कान। ये पांच कर्मेंद्रिया ये हमारे वश में आ जाए। इनका जो रस है ये बाह्यमुखी बनाता है अभिव्यक्ति को। मनुष्य बाह्यमुखी है इन रसों की वजह से, दौड़ा रहे हैं, ये सामने है हम पीछे है, ये सामने है हम पीछे है। उदाहरण दिया जाता है एक व्यक्ति का, एक गाय है, वो व्यक्ति उस गाय के दोनों ही सिंह, उसके जो हॉर्न है उसको पकड़कर घसीट कर लेके जा रहा है, उसे उस गाय को एक कमरे में लेके जाना है। उसे पता नहीं, पहली बार ही गाय उसे दी गई है पालने के लिए, उसे पता नहीं गाय को किस तरह इधर से उस तबेले में, उस कमरे में अंदर लेके जाए। वो उसके सिंह को पकड़ता है और खींचते हुए लेके जाता है, जितना खींचता है गाय और विद्रोह करती है, उछल के उसको पटकती है नीचे, फिर वो पकड़ता है। दिखाया है गुरु नानक ये देखते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं मर्दना कि ये दृश्य देखो कैसा है, क्या करे कि जिससे वो गाय अंदर आ जाए, क्या करना चाहिए। वो उसको सिंह से पकड़कर खींचते घसीटते हुए लेके जाने की कोशिश कर रहा है, क्या करना चाहिए। तो उसको दिखाते हैं चारा, हाथ में देते हैं वो व्यक्ति के, और कहते हैं इस चारे को उस गाय के सामने लो, और उसको दिखाते दिखाते पीछे सर को, वो अंतर उतना ही रहे, पर वो अंतर कम भी ना हो ज्यादा भी ना हो, ज्यादा हुआ तो चलेगा पर कम ना हो जाए, कम हो जाए तो वो तो पकड़ के खा लेगी। तो दिखाया है वो व्यक्ति उस चारे को हाथ में देता है और गाय स्वतः ही बिना कुछ किए उसके पीछे पीछे और कमरे तक पहुंच जाती है, गाय कमरे के अंदर, वो जो डिस्टेंस था वो उतना ही रहता है, वो पूर्ण होता ही नहीं है। कर्मेंद्रिया भी क्या है, इसी तरह रसों के पीछे भागती है, पर कभी तृप्त नहीं होती है उनके पीछे भागकर। जब पूरा बंधन आ जाता है तब उसे पता चलता है कि मैं बंध कोई हूं, वो अंदर अंतर तो ऐसा ही रहा, तृप्ति हुई ही नहीं, तो जो भी विषय वस्तु है, भोग की वस्तुएं है, जिनका मनुष्य भोग करता है, वो सारी ही वस्तुएं मनुष्य को दौड़ाती है। सारे ही रस, पांच रस जो हमने बताए, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, कर्मेंद्रिय जीत बनना, ये पार पांचों ही वश में आ जाना। बाबा ने कभी मुरलियों में कहा है, जैसे ही मैंने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, सबसे पहला कार्य जो मैंने किया है वो इसकी कर्मेंद्रियों को शांत कर दिया। ये मुरली में वाक्य आया था। सबसे पहला कार्य कौन सा किया बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के साथ, कि उसकी सारी ही कर्मेंद्रियां शांत कर दी, शीतल कर दी। जब ये मुरली चली थी तो हमारे ग्रुप में कोई एक भाई कह रहा था, बाबा हमारी भी कर दे तो कितना अच्छा हो। इतना आसान नहीं है, साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, क्योंकि कर्मेंद्रियों को रसों की आदत सी पड़ गई है। अगर रस छीन लिए जाए तो बेचैनी उत्पन्न होती है। जैसे कोई व्यक्ति रोज दारू पीता है, रोज रोज शाम को वो शराब पीता है, अचानक उससे अगर कह दो छोड़ दो तो छोड़ेगा क्या? यदि छोड़ भी दे तो थर्ड फोर्थ डे विड्रॉल सिम्टम्स ऐसे से हाथ हिलने लगते हैं, और तलब, बेचैनी, चिल्लाना, बहुत कुछ होता है शरीर में, क्योंकि जो रस मिल रहा था अचानक रोक दिया गया। वो व्यक्ति सोचता भी है सारे दिन भर में, शराब बहुत खराब चीज है, शराब नहीं पीनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके पास ज्ञान नहीं है, पर जैसे ही शाम होती है मधुशाला याद आती है, फिर वही मधुशाला। दिन भर संकल्प करता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है, संकल्प करता है सुबह सुबह कि नहीं पीऊंगा आज से, परंतु जैसे ही शाम होती है, शाम का वो वातावरण, शाम की वो शांतता, अवध की शाम बहुत प्रसिद्ध है हमने सुना, अवध की शाम, तो वो शाम जैसे होती है, पैर न चाहते हुए भी उस ओर चलने लगते हैं और पहुंच जाते हैं। पीता है उसके बाद में फिर पछताता, अब नहीं पीना चाहिए, क्यों पिया, उससे तो ये खराबी वो खराबी, ऐसा होता है वैसा होता है, परंतु परवश आत्मा क्या करे बेचारी। हमने तो ये एक शराब का उदाहरण दिया, ऐसी बाकी सारी ही चीजें, नेट एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन भी ऐसा ही है, जिसे उसकी आदत पड़ गई लत नेट की, फिर वो देखे बिना नहीं रहता। सारे दिन भर अपने आप को समझाएगा अमृत वेद से लेकर तो, परंतु जैसे ही कमरे में आएंगे, रात के 10 बजेंगे, अब सोने का टाइम है, उस समय इंटरनेट याद आता है। एक डाली से दूसरी डाली, एक लिंक से दूसरा लिंक, सारे झाड़ का चक्कर लगाते हैं, परंतु आत्मा तृप्त संतुष्ट, और उसी अवस्था में वो सोती है, और फिर जबरदस्ती प्रयत्न पूर्वक अमृत वेला उठती भी है, परंतु योग में अनुभव नहीं। मुरली भी सुनती है परंतु मुरली में रस नहीं, सेवाएं भी करती है पर उन सेवाओं में टक्कर होती है अहंकार की और मैं की, एडिक्शन है। तो जैसा वो शराब का नशा है और एडिक्शन है, वैसे ये बाकी भी बहुत सारे नशे हैं। पद का नशा, मैं कुछ हूं इसका नशा, संपत्ति का नशा, धन का नशा, यही व्यक्ति को भटकाता है। तो पांच चीजें जो है अब एक एक करके हम एक एक लेंगे। सबसे पहला है आंख, आंखों का रस। हमें संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत बनना है, ये लक्ष्य है पहला, तो इसको भूलना नहीं है। आंख को किसमें रस है? आंख को देह को देखने में रस है। ज्ञान कहता है सब मिट्टी है यह देह, परंतु अवचेतन मन ने इसे स्वीकार नहीं किया है अब तक। सबकॉन्शियस माइंड ने इसे स्वीकार नहीं किया है। वो केवल कॉन्शियस माइंड तक है यह ज्ञान कि सब कुछ मिट्टी है, सारे देह। आंखों का रस देह को देखने में है, आंखों का रस झगड़ा देखने में है, आंखों का रस वाद विवाद होते हुए देखने में है, आंखों का रस दूसरों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है वो देखने में। अन्याय का विरोध जरूर करते हैं हम, परंतु रस उसका उसको देखने में है। कहीं ना कहीं वो चाहता है ये हो। मन की इच्छा है कि ये हो। खलील गिब्रान नाम का एक कवि है, उसने अपनी एक कविता लिखी है सास और बहु, अपनी बेटी की, मां और बेटी के ऊपर। मां और बेटी, कितना पवित्र संबंध है। मां को कितनी इच्छाएं होती है अपनी बेटी के प्रति, पर उसने एक ऐसी अद्भुत कविता लिखी है कि वो देखकर वो सुनकर तो हमको लगता है ऐसा भी हो सकता है। उस कविता में मां और बेटी को एक बीमारी होती है रात में चलने की और रात में बात करने की नींद में। सोमनैम्बुलिज्म उसको इंग्लिश में मेडिकल में कहते हैं। बोथ ऑफ देम सफर फ्रॉम सोमनैम्बुलिज्म, रात को उठकर चलने की और बात करने की। तो दिखाया है उस कविता में मां सोई है, रात को उठती है, बगीचे में चली जाती है। बेटी भी रात को सोई है, बगीचे में चली जाती है। मां अपनी बेटी से कहती है कि तू यहां पर भी आ गई, तेरे वजह से सब कुछ हुआ है मेरे जीवन में अत्याचार। मां अपनी बेटी से कह रही है, पहले लोग मुझे कितना मानते थे, मेरा जो सौंदर्य है उसकी तारीफ करते थे, जब से तू आई है सबका ध्यान तेरे तरफ चला गया है। पहले लोग मेरे तरफ ध्यान देते थे, जब से तू आई है अब तेरे तरफ ध्यान देते रहते हैं। उसको बहुत गालियां देती है वो, मैंने अपना सब कुछ तेरे लिए लगा दिया और तू है कि मेरे तरफ ध्यान भी नहीं देती, और इस तरह की बहुत बहुत बातें करती है। और उसकी बेटी कहती है, ये तू जो भी कह रही है चुप कर, ये सब कहना, तेरे वजह से तो मेरा जीवन बर्बाद हुआ है। अपनी मां को वो कहती है, तू है आज तो, अब तक तो मेरी शादी हो गई होती, तेरे लिए मैं रुकी हूं बस, नहीं तो मेरे से शादी करने वाले कितने खड़े हैं बैठे हैं, तेरी सेवा करते करते तो मेरा ये हाल हुआ है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग प्रकार की गालियां देते हैं, और भी बहुत बातें उसने, हमें याद नहीं अभी, वो न कहना ही अच्छा है। और उस तक सुबह हो जाती है, नींद पूरी हो जाती है, फिर मां कहती है, अरे बेटे तू यहां क्या कर रही है, तुझे ठंड लग रही होगी, चल जल्दी चल मैं तुझे घर ले चलती हूं। बेटी कहती है, अरे मां तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम पहले अंदर चलो। यहां कविता पूरी होती है। क्या हम वही है जो हम दिखा रहे हैं? अवचेतन में कुछ और ही है सबकॉन्शियस में, और ऊपर से हम दिखा क्या रहे हैं? कविता में दिखाया है दोनों का एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा नफरत के भाव है सबकॉन्शियस में, उनको भी नहीं पता वो है, उनको भी नहीं पता कि वो है। वो तो उस अवस्था में वो बाहर निकल रहा है, सबकॉन्शियस का बाहर निकलना सम्मोहन में यही होता है, सबकॉन्शियस में जो है, अवचेतन में जो, उसको बाहर निकालना, चेतन मन को शांत कर देना। जो भी संदेश दिए जाते हैं सीधा सबकॉन्शियस में, इसके लिए तुरंत उसको स्वीकार कर लेता है व्यक्ति। इसके लिए अगर कोई ठंडी में है और उसको कहो हिप्नोटाइज करके बहुत गर्मी हो रही है तो उसको पसीना आने लगेगा। अगर किसी को कहो कि यहां बहुत ठंड है, बहुत ठंड है धूप में, तो उसको ठंड लगने लगेगी। ये सम्मोहन है। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमने अंतर मन में क्या स्वीकार किया है। तो हम बात कर रहे थे क्या ये ऊपर जो हम दिखा रहे हैं चेतन मन, क्या वही हमारा वास्तविक स्वरूप है? ऐसा तो नहीं हमारी भी स्थिति उस मां और बेटी की तरह है, हम दिखा कुछ और रहे हैं परंतु अंदर कुछ और है, अवचेतन में कुछ और ही है। क्या हमने इस ज्ञान को अवचेतन मन में स्वीकार कराया है या केवल ये कॉन्शियस में है? कॉन्शियस शांत हो जाए और सारे संदेश अवचेतन तक पहुंचे, ये योग है। हमारा सारा ही योग है मन को शांत कर देना, और ऐसी शांत अवस्था में जो उसे सुनाया जाता है वो अंदर जाता है। हमारा चेतन मन इतना आक्रांत, इतना ही उत्तेजित है, उस अवस्था में हम ज्ञान को सुन रहे हैं, वो कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है, वो केवल ऊपर ऊपर तैर रहा है। अगर अंतर मन से हम स्वीकार कर ले एक एक सोमान को तो हमारी अवस्था ऊंची हो जाए। तो हम बात कर रहे थे आंख की, आंख क्या देखना चाहती है? देह को देखना चाहती है, परंतु हमने अंतर मन को अब तक ये नहीं स्वीकार कराया है ये देह है क्या। अर्ध सत्य है ये, जो सुबह हम कह रहे थे कि देह जो है उसके देखना है तो उसके वास्तविक स्वरूप को देखो, वो बीमार होता है उस स्वरूप को देखो, वो बूढ़ा होता है उस स्वरूप को देखो, वो जो मरता है और मृत देह होता है उसको कहते भी क्या है, डेड बॉडी। अगर जब तक आदमी जिंदा है तो हम क्या कहते हैं, उसका नाम लेते हैं, जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं, बॉडी को यहां से उठाकर वहां रखो, नाम भी नहीं लेता कोई। कोई कहता है रमेश भाई, आशीष भाई, डेड बॉडी को कोई नहीं कहता, क्या कहते हैं, बॉडी को यहां से उठा के वहां रखो, बॉडी को यहां से उठा के वहां रखो, बॉडी कहते हैं मरने के बाद। ये इस देह की गति है। अगर देखना ही है तो वास्तव में देह क्या है वो देखो। ये अस्थि पंजर, बैग ऑफ बोन्स एंड स्किन एंड मसल, यही है बस, ये उसकी वास्तविक स्वरूप है। क्या इसमें मैं सम्मोहित हूं, इसमें मुझे इतना आकर्षित कर रहा है ये, इस देह को देखने के लिए? आज दुनिया भर में जितना ही साहित्य है और जितना ही लिटरेचर है और जितने ही मैगजीन्स है, जितनी ही मूवी है, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड वन कॉन्सेप्ट, हवाओं में ही वासनाएं हैं, चारों ओर केवल एक ही एक आंधी है, एवरीथिंग सेंटर्स अराउंड सेक्स, उसी में सब कुछ है। और ये ऐसा सम्मोहन तैयार कर दिया है कि कोई भी इससे अछूता नहीं है, इस सम्मोहन से सारी मनुष्य जाति, कोई दूसरे ग्रह का प्राणी इस संसार में आ जाए तो कहेगा ये क्या है, ये एक ऐसा विषय है कि जिसकी कहीं पर भी चर्चा नहीं होती है, कोई खुलेआम इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, परंतु हर मन के में वही काम वासना समाई हुई है, ऊपर कहीं चर्चा नहीं पर अंदर वही भरा है। कितना आश्चर्य होगा उसे। और इसकी पूर्ति के लिए ये क्या क्या सम्मोहन चल रहा है ऊपर से, विवाह या जो भी फैट वेडिंग्स, जो कुछ भी मनुष्य करता है, परंतु वास्तव में अपनी काम वासना को तृप्त करने के ये अलग अलग माध्यम मनुष्य ने बनाए हैं, जिसे समाज ने स्वीकृति दी है। सत्य इससे कुछ और है, पर सत्य ये संसार नहीं है और ना ही यहां जो कुछ भी हो रहा है वो। ये एक सम्मोहन की दशा में सब कुछ तैयार किया गया है, सारा समाज। तो सबसे पहला रस है देह का, आंख देह को देखना चाहती है। इस रस को समाप्त करने के लिए देह क्या है उसको देखो, क्या उसका स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप उसको समझो। जब तक हम ये नहीं समझते, ये देह का आकर्षण समाप्त नहीं होगा। इसके लिए कभी कभी अस्पताल में भी चक्कर लगाया करो। कोई परिचित है उससे मिलने नहीं, अपरिचित से मिलने। ह्यूमन क्राय क्या होती है उसको भी समझो। क्या है इस जीवन की वास्तविकता? ये देह जिसके प्रति मैं इतना आकर्षित हो रहा हूं, क्या है इस देह में? वहां जाकर वैराग आएगा। दूसरा स्थान है पीछे, शमशान घाट, जलती हुई चिताओं को देखना। यह अभ्यास है एक, चाहे कोई भी मरता हो अगर जा सके तो जाए। क्या देखने के लिए? धधकती हुई वो लपटे आग की, देखते रहो उन लपटों की तरफ, उस आग की तरफ, तो वैराग उत्पन्न होगा। जब तक उस आग को नहीं देखोगे, वहां खड़े रहो मौन में, किसी से कुछ कहना नहीं है, केवल देखना। यह है जीवन की अंतिम निष्पत्ति। इतनी भागदौड़ की, इतनी आपाधापी, यह है अंतिम परिणति। यहां पहुंचना है। क्या इसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं? इतना विस्तार जो कर रहा हूं, इतना भाग रहा हूं, क्यों भाग रहा हूं? जबकि बाबा कह रहे हैं अब घर जाने का समय, फिर भी हमारी भाग दौड़ चालू है। हम रुक नहीं रहे, इतना तेज गति से भाग रहे हैं कि कुछ दिख रहा है, सामने मिलने वाला है, कोई धन, कोई संपत्ति, कोई बंगला, कुछ तो दिख रहा है सामने। हमें चाहिए वो। भाग रहे, भाग रहे। क्यों भाग रहे? क्योंकि सभी भाग रहे हैं। मुंबई गए हैं कोई? कैसे भागते हैं वहां स्टेशन पे, देखा ना लोग? दादर स्टेशन पर जाकर खड़े हो जाओ, देखो लोगों को क्या कर रहे हैं। 5 मिनट भी किसी के पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। किसी से कहो कहां जा रहे हो, वो कहते हैं बस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? क्योंकि सब जा रहे हैं, भाग ही रहे। कब से भागना चालू किया पता नहीं, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, तब से भागना चालू कर रहे हैं, अब से भाग ही रहे। जिनके लिए कर रहे हैं, क्या इसकी गारंटी है वो तुम्हारा साथ देंगे? वो परिवार जो घर बैठा है, उनके लिए भी टाइम भी नहीं है, वो दूसरी बात। जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भी समय नहीं है, केवल भागना, भागना और भागना। तो सबसे पहला जो रस जो हमें जीतना है, वो है देखने का। देह को देखना है तो वास्तविक स्वरूप को देखो। कैसे ये देह जल जाता है, कैसे ये देह भस्म हो जाता है, कैसे इस देह को सारी बीमारियां आ जाती है, कैसे बुढ़ापे में जब दांत गिर जाते हैं, खाने की फिर भी बहुत इच्छा है पर खा नहीं सकता व्यक्ति, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, चल नहीं पाते, हड्डियां कमजोर है, पर वासना नहीं मरती। यही आश्चर्य है। द स्पिरिट इज रेडी बट फ्लैश इज वीक। बाइबल में लिखा है एक जगह, आत्मा तो जाना चाहती है पर फ्लैश इज वीक। ऐसी अवस्था में पहुंचता है व्यक्ति, तब धर्म के बारे में और ईश्वर के बारे में सोचता है। जब एक पैर कब्र में लटका हुआ है और दूसरा बाहर, तब सोचता है क्या करे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करने का समय अब है, जब हम युवा है। मरणासन्न व्यक्ति नहीं पुरुषार्थ कर सकता। जो कुछ करना है अभी करना है, जबकि फ्रेश ब्लड है। युवा जब मैं कह रहा हूं, उसका संबंध शरीर की आयु से भी नहीं है। युवा मन की अवस्था का नाम है। यूथ इज द स्टेट ऑफ द माइंड, इट हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। देह से उसका संबंध नहीं है। दादी जान की यूथ है या ओल्ड है, क्या कहेंगे? यूथ है ना, रूहानी यूथ है। कैसा उमंग और कैसा उत्साह। परसों ही हमने सुबह दादी को देखा, क्या चमक थी दादी के चेहरे पर, जबरदस्त गजब की चमक थी। ऐसा उत्साह था, पता नहीं जैसे कि कोई बॉम्ब फटने वाला है, ऐसा वो उत्साह था अंदर। तो युद्ध एक स्टेट ऑफ माइंड है, उसका देह से कोई संबंध नहीं है। सदैव युद्ध रहे, ये लक्ष्य है। कल की मुरली में चार बातें जो कही है, उसमें पहली बात यही है पूरी, उत्साह के ऊपर, उमंग के उत्सव, उत्सव के ऊपर, सब कुछ नया हो। तो ये नवीनता का नाम युवा है, युवा धन कहा जाता है। तो आंखों को, देह को देखने में रस है, और बहुत से रस है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो आप सबके लिए होमवर्क। जो मुख्य रस है वो देह है, उसी में एक दूसरा रस है, दूसरे हमारी देह को देखे। एक रस है हम दूसरों की देह को देखे, दूसरा एक रस है दूसरे हमारी देह को देखे। ये स्त्रियों में काफी है संसार में। विनोबा भावे एक बार किसी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, देखा एक महिला गजरा लगाए, गजरा पता है ना, बालों में पीछे लगता है, बहुत बड़ा गजरा लगाए हुए थी। उनको वो कहता है, क्या तुम इस गजरे को देख सकती हो? वो कहती है, नहीं। तो किस लिए लगाया है? दूसरों को आकर्षित करने के लिए। सारी हॉलीवुड, बॉलीवुड और जितने भी है वुड, वो सब इसी सिद्धांत पर ऑपरेट करते हैं, युवकों को अपनी ओर आकर्षित करना, उनके अंदर काम की वासना को जन्म देना, और यही उनके धन कमाने का साधन है। उन्होंने जान लिया है क्या चाहिए पब्लिक को, और उसी काम की वो तृप्ति करते हैं। थाली में परोसकर वही बातें दिखाते हैं, तड़का और मसाला डालकर, जिससे काम विकार प्रदीप्त हो। ये बेड़ा उन्होंने ले रखा है, और इसी जाल में सारी मनुष्य जाति फंस गई है। इस सम्मोहन है ये भी एक तरह से। तो सबसे पहला था आंख, दूसरा कान, शब्द, सबसे महाभयंकर रूप है कामुकता, कामुक बातें, सेक्सुअल टॉक्स सुनना, वो उसका सबसे ग्रॉसेस्ट फॉर्म, सबसे स्थूल, सबसे विकारी, सबसे भयंकर, सबसे भयान रूप है। और यही संसार में सब जगह दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, वो उसका फर्स्ट है, ये सुनना। काम विकार से संबंधित जो कुछ है वो सुनना, ये भी एक रस है। ये सुनने की आदत जिसको पड़ जाती है, वो वही वही सुनना चाहता है। देखना और सुनना दोनों कंबाइंड है, केवल देखने से तृप्त नहीं होता है, वो सुनना भी चाहता है, क्या कहा जा रहा है, एक्टर और एक्ट्रेस क्या कह रहे हैं एक दूसरे से, वो सुनना चाहते हैं। ये भी एक रस है। सबसे पहले तो इस रस का त्याग, उसके बाद सुनने जैसी संसार में बहुत कुछ नहीं है, पर वो सुनना चाहते हैं। बाबा के कभी महावाक्य चले हैं, जिन आंखों ने भगवान को देखा है वो संसार की व्यर्थता, संसार में जो भी नकारात्मकता है उन्हें नहीं देख सकती। जिन कानों ने भगवान को सुना है वो व्यर्थ नहीं सुन सकती। जिन मुख से हम भगवान की महिमा गाते हैं वो मुख कभी दुख देने वाले वचन नहीं बोल सकते। हम वो नहीं कर सकते जो संसार कर रहा है, हम वो मार्ग पर नहीं दौड़ सकते जहां संसार दौड़ रहा है। उनका मार्ग ही दूसरा है, हमारा मार्ग दूसरा है। इस बात को गहराई से समझना है। हम वो नहीं कर सकते, या फिर संकल्प करो मुझे वो नहीं करना है जो कि संसार कर रहा है। क्योंकि हम अलग है, अल्लाह लोक। तो कान सुनना चाहते हैं। निंदा सुख, हिंदी में एक शब्द है निंदा सुख, अर्थात निंदा कोई कर रहा है किसी की, वो हम सुनना चाहते हैं। एक तो महाभयंकर रूप है काम, और बाकी ये सारे हैं निंदा, किसी की ग्लानी, किसी के अवगुण। हम ऊपर से तो कहते हैं कि हमें किसी के अवगुण नहीं सुनना है, देखना है, परंतु जब कोई सुनाए तो हमें अच्छा लगता है। अव्यक्त महावाक्य 95 के बाबा ने कहा है, जितना जो समाचार दिलचस्प होगा, इंटरेस्टिंग, उतना ही उसमें व्यर्थ होगा। और आज इस यज्ञ में ही अगर देखें तो बहुत सारा व्यर्थ है। अब हमारे ऊपर है हम क्या सुने और क्या न सुने। एक और है, कोई हमारी ग्लानी कर रहा है वो हम सुनते हैं, सुनते इसमें रस तो नहीं है, पर हम जानना चाहते हैं ये कह क्या रहे हैं हमारे बारे में, फिर हम देखेंगे, थोड़ी योजना बनाएंगे, फिर हम भी कोई कम थोड़ी है। हमारे बारे में ऐसा कहा, हमारे सामने तो बहुत अच्छा कहता है, और हमारे पीछे हमारी ग्लानी, अपने गुप्तचर लगाते हैं, उसने हमारे बारे में क्या क्या कहा पता करके आओ, ये कहा, अब हम भी कहेंगे, वो भी इनडायरेक्टली, उसको सुनाओ जाके कि हमने ऐसा यहां कहा। यह भी एक सूक्ष्म रस है, इस रस से भी स्वयं को मुक्त करना है। कानों का रस है ये, कान। वो एक महावीर थे जिनके कानों में लोगों ने कील ठोके, परंतु अप्रभावित रहे, कानों से रक्त धारा बहने लगी, क्योंकि वो बोलते नहीं थे, मौन थे। उनके मौन के समय में इतना लोगों ने उन्हें सताया, बहुत सताया, जिस गांव में गए कहीं पत्थर मारे, बहुत सताया, पर वो मौन थे। सब कुछ किया, बहुत सहन किया। उनकी बातें छोड़ो, इसी यज्ञ में अगर ब्रह्मा बाबा के जीवन को यदि हम स्टडी करें, आर्य समाज बहुत ज्यादा विरोध में था यज्ञ के। क्यों? क्योंकि उनकी धारा स्वामी दयानंद सरस्वती पर आधारित है, जो कि वेद को ही सब कुछ मानते हैं, वेद वाक्य ही सब कुछ है। भक्ति को वो लोग नहीं मानते, वेदों को मानते हैं। और ब्रह्मा कुमारी अर्थात हम सीधा वेदों के अगेंस्ट है, हमारा सारा ज्ञान वेदों को हम मानते ही नहीं। इसके लिए सबसे अधिक विरोध यज्ञ को जो आर्य समाज के द्वारा हुआ। जब भी हमारी कोई प्रदर्शनी होती थी वहां आर्य समाजी बाहर आकर खड़े हो जाते थे, अपनी पर्ची लेकर, ब्रह्मा कुमारी पाखंड, और जो भी निकलते थे लोग उनके हाथ में थमाते थे। ऐसा जबरदस्त विरोध हुआ। पर मुझे नहीं लगता है, हमने कभी सुना ही नहीं कि ब्रह्मा बाबा को कभी क्रोध आया, या उन्होंने कभी कहा कि इनका विरोध हम करें, मानहानि का केस दर्ज करें, कभी नहीं। कैसी बेहद की वो धैर्य होगा, वो कैसी सहनशीलता होगी। धैर्य का भी सागर भगवान जो है, वो धैर्य का भी सागर है। हम ये एक गुण उसमें ऐड करना चाहते हैं, बाकी तो हम कहते हैं ज्ञान का, गुण का, वो धैर्य का भी सागर है। ब्रह्मा है तो ब्रह्म शिव बाबा है तो ब्रह्मा भी है, धैर्य का सागर। जो लिख सकते हैं वो इस पर लिखे, धैर्य का सागर वो कैसे है, कितना उसका धैर्य है। देखो जो भविष्यवाणियां उसने तप कर रखी थी 60s में, साकार मुरलियों में आता है, वो अभी पूर्ण हो रही है। इतने सालों का उसका धैर्य है, तब वो पूर्ण नहीं हुई, तब तो विरोध चालू रहा चालू रहा चालू रहा। धैर्य, वो धैर्य का सागर है। तो कान से हम निंदा ग्लानी ये सब कान के रस है। हमारे कान जो है वो ईश्वर ये महावाक्य सुने, उसी में वो रस ले। ये यदि रस हमें खींचता है तो ये गिराने वाला रस है। तुलसीदास ने लिखा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, भगवान की कथा सुनते सुनते जिनके श्रवण जो है वो समुद्र के तरह है, जहां पर भी प्रभु की कथा है वो वहां पहुंच जाते हैं। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि जैसा है उसकी कथा, उसके वाक्य, उसके महावाक्य भी अनंत है। उसको सुनने के लिए कान हमारे समुद्र की तरह हो जाए, उसको सुनने के लिए वो लालायित हो जाए, ना कि संसार के समाचार को। एक दूसरा जो व्यर्थ है वो है संसार समाचार, कहां क्या क्या हो रहा है ये भी जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। कोई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक एक खबर पढ़ते हैं, एक एक घंटा हर एक चीज पढ़ते हैं। क्या उतनी आवश्यकता है उस व्यर्थ, क्या है उसमें काम और क्रोध से हुए हुए अत्याचार और कुकर्म और विकर्म और दुष्कर्म के अतिरिक्त तो उसमें कुछ भी नहीं है। एक ही चीज है उसमें, यहां ये हुआ वहां वो हुआ, इसने ये कहा उसने वो कहा, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। यहां यदि हमें पढ़ना है तो इस आधार से पढ़े, इसलिए पढ़े कि रावण की क्या प्लानिंग है वो जानने के लिए। वो भी सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा जो मुख्य मुख्य उतना जान लिया काफी है, उसमें ही डूबे रहना ये व्यर्थ है सुनना। फिर है स्पर्श चमड़ी, तीसरा इसमें बहुत सारी बातें हैं पर हम एक ही बात लेंगे, देह को स्पर्श करने की इच्छा। देखना और देखने के बाद इच्छा होती है स्पर्श करूं। इसको स्पर्श करते समय कोई भाव मन में नहीं उत्पन्न होता है, इसको स्पर्श कर रहे हैं कुछ भी भाव उत्पन्न नहीं होता है। पत्थर को स्पर्श करो कोई भाव उत्पन्न नहीं, परंतु देह को स्पर्श करते ही कुछ कुछ होता है, कुछ हलचल होती है इंद्रियों में। यह देह, ये जैसा सुबह भी कहा था, टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन, जो भी स्पर्श से उत्पन्न सुख है अंततो गत्वा, अंततः वो दुख में ही परिवर्तन होगा, चाहे वो किसी भी तल का वो स्पर्श हो देह का। स्पर्श जो है, हम कुछ और स्पर्श की बात कर रहे थे, आप कुछ और स्पर्श की बात कर रहे हैं, परंतु यह भी सत्य है। एक है मां का स्पर्श, वास्तव में स्पर्श इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे मन जो है उसकी क्या भावनाएं हैं, उसमें क्या है वो महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति है जो कि सन्यासी है, जिसने कभी स्त्री को देखा ही नहीं है, वो जब उतर के नीचे आता है बाजार में और स्त्री को देखता है, उसे पता भी नहीं कि इसको स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जैसा उदाहरण दिखाया है महाभारत में व्यास का, व्यास और उनका बेटा शुकदेव, शुकदेव परम ज्ञानी दिखाया है। वो जन्म ही लेता है तो 12 साल का दिखाया है, और जन्मते ही संसार से इतना वैराग है कि वो भाग रहा है, नहीं जाना है मुझे संसार में, जाना ही नहीं है। एक होता है संसार को थोड़ा देखना और फिर वैराग आना है, वो नहीं, सीधा जन्म लिया और भाग रहा है। व्यास उसके पीछे भाग रहे हैं। दिखाया है एक सरोवर है जहां कुछ अप्सराएं स्नान कर रही है। शुकदेव वहां से गुजरता है, वो वैसे ही जो चालू है वही चालू रहता है, और जैसे ही व्यास पीछे आते हैं वो अपने आप को ढक लेती है सभी। तो वह व्यास उन स्त्रियों से, उन अप्सराओं से पूछता है कि मैं तो इतना बूढ़ा हूं, आपके दादा परदादा के दादा के दादा के उम्र का हूं, मुझे देखकर आप अपने आप को ढक लिए, परंतु मेरा बेटा जो कि जवान है यहां से क्या, तब आपने कुछ नहीं किया। तो वो कहते हैं उसे तो ये पता ही नहीं कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, तो स्पर्श के पीछे भावना क्या है वो कार्य करती है। मां का जो स्पर्श है बहुत पवित्रतम स्पर्श है, उसके पीछे भावना कामुक नहीं होती है, बहुत श्रेष्ठ भावना होती है, वात्सल्य होता है वहां पर, उसे काम विकार नहीं कहा जाता है, उसे प्रेम कहा जाता है वहां पर। बाद में वो मोह बनता है वो दूसरी बात, परंतु मां का जो स्पर्श होता है उसमें उसकी जो भावनाएं होती है श्रेष्ठ भावना होती है, शुभ भावना होती है, उसको लगता है मेरा बेटा बहुत आगे जाए, संसार में बहुत प्रगति करे, इस तरह की भावना है। तो स्पर्श वास्तव में स्पर्श इतना, डॉक्टर भी स्पर्श करता है, फीमेल पेशेंट्स को स्पर्श करता है, परंतु उसकी भावनाएं वहां दूसरी होती है, वो भी देखता है, ऑपरेशन करते हैं तो सब खुला रहता है, सब देखता है, परंतु उसकी भावनाएं दूसरी होती है वहां पर। भावना क्या है, स्पर्श के पीछे भावना काम करती है। तो एक स्पर्श जो आपने कहा वो था मां का, दूसरा है साधु संत योगियों का स्पर्श, तपस्वियों का स्पर्श, जैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन में दिखाया है, जब अपनी साधना की के शिखर पर वो थे तो उनको लगता था कि मेरे अंदर अद्भुत शक्ति है, और उनका एक जो गुरु भाई था राखाल, जो बाद में स्वामी शिवानंद बने, उसने राखाल के घुटनों में एक बार बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये दर्द को मैं ठीक कर सकता हूं, और उन्होंने अपना हाथ उसके घुटनों पर रख दिया और ध्यान में अपनी सारी शक्ति को केंद्रित कर दिया उसके घुटनों पर, और थोड़ी देर के बाद वो घुटनों का दर्द ठीक हुआ। जब उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस वहां आए तो उन्होंने उसे बहुत डांटा और कहा कि तुम्हारी जो शक्ति है वो विश्व कल्याण के लिए, ये सब चीजों के लिए नहीं है, ये सिद्धियां तो बाधा है मार्ग में, इसके लिए तुम्हें यह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला हुआ है, किसी का घुटना और किसी की शारीरिक बीमारी ठीक कर दो यह तो बहुत ही छोटा सा कार्य है, यह तो संसार के डॉक्टर बैठे हैं वो भी कर देंगे, तुमको अपनी स्पिरिचुअल पावर्स ये सब कार्यों में नहीं इन्वेस्ट करनी है, तुम वटवृक्ष हो, तुम्हें तो संसार का कल्याण करना है। तो वो भी स्पर्श था, साधु संत योगी महात्मा ये सभी के स्पर्श। बाइबल में उदाहरण दिया है जीसस क्राइस्ट का, वो आता है एक अंधे व्यक्ति के आगे, डोस्ट थाउ बिलीवेस दैट आई कांस्ट क्यूर दी, वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, यस लॉर्ड, वो अंधा व्यक्ति कहता है हां मुझे विश्वास है, आई बिलीव दैट थाउ कांस्ट क्यूर मी, और दिखाया है वो मिट्टी लेते हैं, मिट्टी में थूकते हैं और उसकी आंखों में लगाते हैं और कहते हैं कि जा पानी है आंख धुलाई कर, और वो आता है और वो देखने लगता है। ये भी स्पर्श ही था, स्पर्श से बीमारियां ठीक होना, ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि उस स्पर्श के पीछे यहां पर आध्यात्मिक शक्ति कार्य कर रही है। यदि कोई सोचे योगी कि मुझे किसी को ठीक करना है और अपनी सारी पावर वहां पर एकाग्र कर दे तो सामने वाला व्यक्ति भी ठीक हो सकता है। हमें याद है हमारे ही जीवन में अज्ञान काल में जब हम फर्स्ट MBBS में थे, हम जिस घर में किराए से रहते थे वहां एक बार स्वामी मुकुंदानंद के शिष्य है, सिद्ध योग जो सिखाते हैं, पुणे में शायद उनका केंद्र है, तो उन्होंने हमारे ऊपर शक्तिपात किया। एक कमरे में हमको बिठाया था और कई देर तक एक भाई सामने बैठा और उन्होंने कहा कि शक्तिपात उसको कहते हैं, वो सिद्ध योग स्वामी मुकुंदानंद का, और उन्होंने हमें बहुत सारी शक्तियां दी और कहा कि अगले 7 दिन तक आप जो भी प्रयोग करोगे जिसके ऊपर वो ठीक होगा। पर वो हमारा फर्स्ट MBBS था, हम डरते थे क्योंकि वहां रैगिंग और ये सब चलता था मेडिकल कॉलेजेस में। हम हॉस्पिटल में खाली अपना क्लास हुआ और सीधा चुपचाप हो गया और निकल गया, हॉस्पिटल में जाना, पेशेंट देखना ये सब नहीं था। फिर भी हम चुपके चुपके एक दो बार हॉस्पिटल गए और जो पेशेंट हमको लगे कि बिल्कुल अब मरने वाले हैं, सीरियस जो है, उस पर वो प्रयोग हमने तब किया था और हमने देखा कि वो बच गए। एक दो थे या जिनकी जो तकलीफ थी वो ठीक हुई। ये इस तरह की सिद्धियां संसार में बहुत है। तो यहां जो स्पर्श है इसके पीछे आध्यात्मिक शक्ति काम करती है। हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो काम विकार की चर्चा कर रहे हैं कि उस भाव से स्पर्श करना। वो दिखाते हैं ना, दो बौद्ध भिक्षुक, एक बूढ़ा एक जवान जा रहे हैं और बीच में एक नदी आ गई। वहां पर एक, सबने सुनी होगी कहानी, एक स्त्री खड़ी है, वो जा नहीं सकती, उसको भय लग रहा है, तो युवक उसको उठा लेते हैं, आगे तक छोड़ देता है। तो जो बूढ़ा भिक्षु है बहुत क्रोध से भर जाता है क्योंकि नियमों का भंग किया, और वो युवा है और ये किया, किसी को हाथ लगाया। वो कहता है तुमने उसे हाथ क्यों लगाया? तो वो कहता है सन्यासी, मैं तो उसे वहीं छोड़ के आया, उसको तो आप तक आप पकड़े हो। वो दूसरे अर्थों में कहानी है, परंतु ये जो यहां भाव था मदद करने का, अभी जो आर्मी और उत्तराखंड में जो भी यहां वहां त्रासदी होती है, मिलिट्री के लोग जाते हैं तो वो ये नहीं देखते ये स्त्री है या पुरुष है, उनका भाव होता है बचाना, सबको बचाना, रक्षा करना है सबकी। डॉक्टर का भाव होता है उसको डायग्नोसिस क्या है वो देखना, भाव क्या है। वैसे मां का भाव अलग है, परंतु एक भाव होता है कामुकता का, उसमें आत्मा को ज्यादा रस है। स्पर्श, और इसी स्पर्श से फिर दुख की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है, क्योंकि व्यक्ति कभी एक स्पर्श से संतुष्ट नहीं होता है, कई सारी कर्मेंद्रियों से स्पर्श करना चाहता है, अलग अलग कर्मेंद्रियों के स्पर्श से अलग अलग सुख की प्राप्ति होती है, और एक सुख एक से बढ़कर है, परंतु है सभी क्षणिक, परंतु वही परम लगता है, सबसे बड़ा लगता है। तो ये जो स्पर्श करने की इच्छा है, इसके घातक परिणाम है, उसको कट इन द निप, जब वो छोटा है वहीं उसको समाप्त कर दो। उसके बाद में है गंध, नाक, ये थोड़ा कम पापी इंद्रिया है, ये थोड़ी पाप की कड़ी में थोड़ा कम पाप करती है। इसमें कम एक ही बात कहेंगे, गुलजार दादी जी का एक उदाहरण है कि शायद शांतिवन या कहीं और, पता नहीं कहीं की क्लास चालू थी और कहीं से तो हवा के झोंके से पूरे क्लास में जैसे बदबू फैल गई, शायद बाहर से कुछ आई हो खिड़कियों से, दिल्ली की बात है या मधुबन की है हमें पता नहीं, तो सभी भाई बहन एकदम ऐसे 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 कुछ कुछ करते हैं ना, रुमाल वगैरह निकाल के ये वो करके दिखाना कि बहुत खराब है ये। तो दादी ने तब कहा था, क्या ये कर्मेंद्रिय जीत की निशानी है कि दुर्गंध को सहन ना कर सको? मुंह के सारे एक्सप्रेशन, फेस के सारे एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से एक्सप्रेशन करते, घृणा, तिरस्कार, और जिसने वो दुर्गंध फैलाई है उसके प्रति घृणा, सब कुछ भाव वहां पर आ जाते हैं। दादी ने प्रश्न पूछा था, क्या यह कर्मेंद्रिय जीत की निशानी है? इस संसार में सब कुछ है, सुगंध है, दुर्गंध है, सड़ांत भी है, सब है, सब कुछ सहन कर लेना। और अंतिम जो है वो है ये सबसे कातिल, स्वाद। जिसने स्वाद को जीत लिया, समझ लो सब कुछ जीत लिया। रसेंद्रियों को जब तक वश में नहीं करेंगे तब तक जननेन्द्रिय वश में नहीं हो सकते। रस ये है बस, यहां जाने के बाद फिर कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, मामला केवल यहां तक है, यहां तक। यहां से नीचे चला जाए उसको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, इसको चाहिए बहुत। कितना भी खिलाओ, कितना भी खिलाओ, द्वापर की भूख अब तक शांत हुई है किसी की? इस गड्ढे में कितना भी डालो कभी भी शांत नहीं होता है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लंदन में एक व्यक्ति था, 153 वर्ष वो जिया था, उसका नाम हम भूल रहे हैं, शायद पारस, पार या पार ऐसा कुछ नाम था, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। लंदन में ये व्यक्ति था जो बहुत ही सादा आहार करता था, परंतु एक बार लंदन के महाराजा चार्ल्स वन, मैंने उसे चार्ल्स वन या टू, भोज पर आमंत्रित किया। उसने कहा मैं नहीं आ सकता, परंतु जबरदस्ती आमंत्रित किया। पेयर्स या पार्स ऐसा कुछ नाम है, पेयर्स हमको याद नहीं आ रहा है अभी। तो उसको भोज पर आमंत्रित करते और जबरदस्ती इतना खिलाते उसको। इस पर बड़ी कहानियां भी बनी हुई है, किताबें भी लिखी हुई है विदेश में। उसी रात उसकी मृत्यु होती है, एट द एज ऑफ 153 ईयर्स। ऑटोप्सी में पता चला, पोस्टमार्टम जो किया था उसका, कि जो अन्न उसने खाया था वो पचा नहीं सका, क्योंकि उसके शरीर को उस तरह के अन्न खाने की आदत नहीं थी। तो सारा खेल इस स्वाद पर है। इसका ज्यादा हम विस्तार या नहीं करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। तो पांचों ही इंद्रिया, पांच पंचेंद्रिया, इनको वश में करने के लिए साधना चाहिए। पहले तो ये जानना है हमें रस किन किन बातों में है, फर्स्ट चेकिंग, उसके बाद में आगे की सारी बातें। पहले ये हम स्वीकार कर ले कि ये मेरी कमजोरी है, मनुष्य ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता। पहले तो हम स्वीकार करें इसको कि ये है, तो हम कहीं ढूंढे मार्ग क्या है, दुख सकौन कारण, कारण क्या है इस दुख का जो हमारे जीवन में है। इतना ज्ञान योग सब करके भी हम खाली है क्यों? जरूर किसी ना किसी इंद्रिय से हमारी शक्ति का लीकेज हो रहा है, उसको वहीं रोक देना। कर्मेंद्रिय जीत, मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मैं राज ऋषि हूं। कल की मुरली कुमारों से मुलाकात। बाबा ने सुमान दिया है कुमार अर्थात राज ऋषि, राज अर्थात स्वराज्य अधिकारी। कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी ओर आकर्षित ना हो, सारी की सारी कर्मेंद्रिय एक बाप की ओर आकर्षित हो। संकल्प में भी वाइब्रेशंस किसी भी कर्मेंद्रिय का अपनी ओर न खींचे। कल की मुरली में महावाक्य है सारे। स्वराज्य अधिकारी बनना बहुत ऊंची बात है। स्वराज्य अधिकारी बनना, स्वयं को आत्मा समझना, बाप का बनना, यही तपस्या है। कल की मुरली किसी को बाबा ने तपस्या कहा है। तो ये देह हमारे वश में हो, स्वार्थ अर्थात आज का वरदान, स्व को स्वाहा करना। स्वार्थ अर्थात जिस रथ में हम विराजमान हैं उसके हम मालिक हो। एक बहुत अच्छा समान है, मैं इस देह का मालिक हूं। ये ऑर्डर दे दिया है हमने, स्वीकार कर लेगा मन। ऑर्डर देना ये एक प्रैक्टिस है, एक दूसरा अभ्यास है। मन को ऑर्डर दो ये करो तो वो मानेगा। जैसे कोई ऑफिसर ऑर्डर देता है ना मिलिट्री में, मिलिट्री में नियम होता है, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। देर इज नॉट टू रीजन वाई, क्यों नहीं पूछो, बस जाना है मतलब बिस्तर उठाओ और चलो। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई, करो और मरो, खत्म। पूछना ही नहीं दाई क्यों मुड़ना है, बाय क्यों मुड़ना है। ऑर्डर आया, जाना है, शत्रु सामने खड़ा है, निकलो। ये आर्मी के नियम है। तो वैसे वहां ऑर्डर मिलता है, तो हम अपने संपूर्ण समान की स्टेज पे स्थित हो जाए। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मैं राज ऋषि हूं, मैं अधिकारी आत्मा हूं, मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूं, मैं जितेंद्र हूं, मैं जितेंद्रिय हूं। इस समान की सीट पर पूर्ण बैठकर पूर्ण अधिकार से ऑर्डर करो। हे मन, हे बुद्धि, हे शरीर, हे इंद्रिय, मैं तुम सभी का मालिक हूं। यह स्वराज्य अधिकार की अवस्था है। तो अभी 7 बजे है, एक 15 मिनट के लिए हम थोड़ा योग करेंगे, उसके बाद सभी ऊपर चलेंगे, वहां पर सामूहिक सम्मोहन, आध्यात्मिक सम्मोहन। तो योग में हमें अभी क्या करना है,